दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं, उस जैसा नहीं। सूरत शुरा में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि लैसा कमिसली ही शैयुन वहुवस समीउल अलीम, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं। यानी अल्लाह जैसा होना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला की मिसाल जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि वो खालिक है बंदा मखलूक है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे कुरान पाक में इसी की आपने सारी तफसील पढ़नी है कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं। याद रखिए, नबियों ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हु इज गॉड, अल्लाह कौन है, उसने ये भी बताया कि कौन खुदा नहीं है। ठीक है, फिर अगली आयत आप देखिए कि आयत नंबर 163-4 में हमने 8-9 निशानियां पढ़ी अल्लाह के इलाह होने की या उसको पूजने की वजूहात। जैसे मिसाल है कि आप अपने बच्चे से कहती हैं कि बच्चे मेरी बात मानो, मेरी मेरा कहना मानो, तो बच्चा आपसे कहता है क्यों मानो, तो फिर माँ क्या कहती है, देखो मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें दो साल तक दूध पिलाया, फिर तुम्हें टेक केयर की। समझ आती है ना वजह? इसी तरह जब आप कहते हैं कि भाई ये शख्स है इसकी इज्जत करो, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा बाप है, तो फिर बच्चा पूछ सकता है क्यों करूं, तो फिर माँ समझाती है उसको कि देखो ये तुम्हारी टेक केयर करते हैं, तुम्हारे खर्चे सारे पूरे किए जब तुम पैदा हुए तब से लेके तुम्हारे पढ़ने के लिखने के। तो हमेशा दुनिया में हम किसी की भी जब बात मानते हैं तो उसके पीछे कोई सबब होता है ना। तीन असबाब आपको बताए थे कि एक सबब होता है किसी से मोहब्बत करने का कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। क्या अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करता है ना? अल्लाह ताला के साथ हमारा कोई मुफाद लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। हम तो एक सांस नहीं ले सकते। आप अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे को खड़ा करके देख ले, सिर्फ एक सांस नहीं दे सकता हमें। सारी दुनिया के डॉक्टर एक तरफ खड़े हों, मशीनें सारी मौजूद हैं, सारे पीर बुला ले, मुर्शिद बुला ले, गुरु बुला ले, इंसानों के सहारे जिनको मानते हैं उनको बुला ले, और कह दो सिर्फ इस जाते बंदे को एक सांस दे दो, एक सांस को नहीं दे सकता, तो गोया कि फिर अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जब दुनिया में किसी से मोहब्बत होती है तो फायदों के हासिल के लिए होती है, अल्लाह ताला से मुफाद है हमें मिल जाता है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि किसी चीज से मोहब्बत होती है वो लज्जत के लिए होती है, वी इंजॉय इट। जैसे मुझे खजूर से मोहब्बत है, क्यों, कि खजूर खाओ तो मजा आता है। हमें अच्छे अच्छे खानों से मोहब्बत होती है, लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं खाना खाने, कई कई घंटे की ड्राइव करके कई कई मील से जाते हैं कि जी हमें वहां का खाना पसंद है, ठीक है, मजा आता है। तो इस वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला से बातचीत करने में, अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ताल्लुक रखने में इंसान को मजा आता है। इस मजे को बंदा कहाँ लेता है, दिन की 5 नमाजों में। 5 दफा जो नमाज पढ़ते हैं ना, ये अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। जब हमने मरने के बाद दोबारा उठना है तो अल्लाह ताला के साथ मामला होना ना, तो दुनिया में 5 दफा वो लज्जत मिलती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जत नज़री इला वजहिका, कि अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करती हूँ। आप इसको अपनी समझ से यूं समझ लें कि जैसे किसी अपने प्यारे से मिलके खुशी होती है। आप लंदन में रहती हैं, 5 साल हो गए आप अपने मुल्क नहीं गई, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में आप नहीं गई, आपको अब उम्मीद लग गई कि आप 1 महीने के बाद छुट्टियों में आप अपने पेरेंट्स को मिलेंगी। सोचिए जरा वो 5-6 साल बाद जब आप एयरपोर्ट पे अपनी माँ या बाप को देखते हैं तो क्या लगता है, मोहब्बत होती है ना। शौहर चले जाते हैं, कई साल दूर रहते हैं, फिर जब मिलते हैं तो खुशी होती है ना, बच्चों को देख के खुशी होती है। बस उस खुशी को जहन में रखें कि जिससे हमें मोहब्बत होती है ना उसको मिलकर हम खुश होते हैं। ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है, सबसे ज्यादा उसकी मोहब्बत अल्लाह से होती है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला से मिलकर खुशी होगी। दुनिया में नमाज उसका एक तारुफ है, गोया कि आपसे कहे कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो आप कह लीजिए कि अल्लाह से मुलाकात की खुशी लेने के लिए। अब जब नमाज समझ आ रही होगी तो फिर आएगी ना खुशी, ये एक अलग इशू है। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमने देखी थी कि किसी से मोहब्बत की वजह क्या होती है, कि उसमें खुद ही खूबियां बड़ी होती हैं, कोई खास किरदार ही ऐसा होता है। कुछ इंसान बहुत नाइस होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, गीबत नहीं करते, बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी में हुसन होता है, तो रह जाते लोग भी उनसे प्यार करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी खूबियां अल्लाह में मौजूद है। ठीक है
ये क्या कहा था
जी,
कि अल्लाह से मुलाकात करने के
तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब हम
ऐसे
क्या,
मीटिंग दे रहे हैं सर।
जी जी बिल्कुल, क़यामत के दिन भी हमने मिलना है, तो आज दुनिया में नमाज में उसकी तैयारी, जैसे रिहर्सल होती है ना, उसकी तैयारी कराई जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अपनी इतनी नेमतें हमारे सामने कर दी कि देखो तुम मेरी बात क्यों मानो, क्योंकि मैंने आसमान को पैदा किया, मैंने जमीन को बनाया। हाँ, गिनते जाए अपनी उंगलियों पे कितनी निशानियां इसमें। अब बताइए, कभी किसी बुजुर्ग, किसी बाबे बुजुर्ग ने ये दावा किया कि आसमान उसने बनाया, जमीन उसने बनाई है? नहीं बनाई। तो ये काम अल्लाह ही का है, तो अल्लाह से हम क्यों मोहब्बत करें? उसकी पहली वजह कि उसने आसमान बनाया, फिर जमीन बनाई, तीसरी वजह रात और दिन आ रहा जा रहा है, वक्त इलाफ लैली व नहार। चलिए अब 2 दिन पहले ही आप देखिए कि घड़ियां 1 घंटा आगे पीछे हुई ना, तो भाई सूरज को ही रोक लेते, रात को रोक लेते, चांद को रोक लेते कि नहीं 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 तुमने अभी नहीं आना, या सूरज को कहते जल्दी हो, कोई कर सकता है? ये जो हम घड़ी को आगे पीछे करते हैं ना, ये हम अपनी बेबसी मानते हैं, क्योंकि वक्त इलाफ लैली व नहार, रात का आना दिन का जाना ये अल्लाह के हाथ में। कोई जिंदा मुर्दा पीर वरी मुर्शद, कोई इंसान, तो इंसान बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है। आज कितनी साइंस हो गई रिकॉर्ड, देखिए कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ, पूरे ग्लोब पे आप सुन रहे हैं, जो जहां से सुनना चाहता है सुन सकता है, ये साइंस की तरक्की है। मैं यहां बोल रही हूँ, ये माइक मेरी आवाज पीछे तक लेके जा रहा है, ले जा रहा है ना, ये तरक्कियां हो रही हैं और भी होंगी, हमारे घर आरामदेह हो रहे हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद क्या आज तक कभी कोई साइंसदान या कोई मुल्क ये दावा कर सका कि हमने रात पे काबू पा लिया? हम नहीं चाहते अभी रात ना हो तो नहीं हो रही, हमने सूरज का पहिया अपने हाथ में ले लिया है, चांद का अपने हाथ में ले लिया, नहीं कर सकते ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप तो यहाँ हैं, नॉर्वे में जाइए जरा, आप थोड़ा सा ऊपर जाए जहां मैं रह के आई हूँ, आपको पता है कि मारूफ है हमारे कल्चर में 6 महीने की रात 6 महीने का दिन, तो एक मुकाम ऐसा है कि दिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि बस सूरज यूं डूबता है, पानी है वहां, तो सूरज जब डूबता है ना, सनराइज, बहुत लोग आए होते हैं उसको के देखने के लिए, तो सूरज बिल्कुल इस तरह जाता है पानी में, ऐसे लगता है डूब रहा है, और 2-3 सेकंड मिनट के बाद वो फिर वहां से उभरना शुरू हो जाता है। 5 मिनट घड़ी में देखे ना, तो सूरज इधर था पानी में, और 5 मिनट बाद देखेंगे निकल के अब इधर आ गया, तो सुबह हो गई, रात हुई कोई नहीं, रात 2 बजे आप घड़ी देखे तो बाहर सूरज निकला होगा, ये कौन कर रहा है? वक्त इलाफ लैली व नहार, इतनी बड़ी तब्दीलियां वो लेके आता है, तो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं ला सकता? दुख सुख बीमारी सेहत किसके हाथ में? और ये रात और दिन का आना जाना ना, ये इस्तियारा भी है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इशारा भी है कि जिंदगी में भी कभी खुशियों की सुबह हो जाती है, कभी दुखों की रात हो जाती है, कभी हम धन धन धनाते फिरते दौड़ते सेहतमंद है, कभी बिस्तर पे डाल दिए जाते हैं, सिर्फ एक बुखार हो जाए हम में से किसी को, अल्लाह रहम करे, सर में दर्द हो जाए, हम बिस्तर पे चिपक के रह जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, सोने जैसी चीज को हमारे आगे रख देना कि ये पहन लो या ये खा लो पी लो, नहीं अच्छी लगती कि सर में दर्द है। वक्त इलाफ लैली व नहार, इस रात और दिन को काबू करने वाली वो जात है जिसके आगे तुम्हें झुकने को कहा जा रहा है, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये कायनात बनाई, उसके हाथ में मैं और आप नहीं कर सकते कुछ भी, हम अपने मकसद तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। आज देखिए कि सुबह हम सब कितने मजबूर थे, वही स्कूल, वही रास्ते, वही गाड़ियां, हम भी वही, वो रास्ता जो 5 से 4 मिनट में पूरा हो जाता होगा, शायद 45 मिनट में आप में से भी बहुत सारों का होगा, मैं तो एंजॉय कर रही थी कैसे। आज आपको पता है हमारे साथ एक कितनी प्यारी बहन है, इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे, आप सब भी प्यारे हैं, लेकिन एक ऐसी बहन है कि जिसका मुझे यकीन है कि अल्लाह को इस वक्त हम सबसे ज्यादा उन पे प्यार आ रहा है, और मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये असल में आज मौसम नहीं खराब हुआ या ये आज रास्ते नहीं बंद हुए, ये अल्लाह हमारी इस बहन को दिखा रहा है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है उसने घूमना पड़ता है, उसमें कभी बंदा लॉस्ट होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, तो हिदायत बिल्कुल हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसके इधर के लॉस्ट होते हैं। आज भी ऐसे हिदायत एकदम नहीं मिलती, हम उसके बिल्कुल करीब, जैसे कहते हैं ना, टकरे मार रहे होते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जो ही अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह कहते हैं आ जाओ दरवाजा खोलो, अल्लाह आपको सीने से लगा देता है। तो हिदायत के करीब रखना, उसके अंदर लाना करीब, सब अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं सुपर ताकत हूं, दुनिया में आप कहते हैं फलां सुपर पावर है, फलां मुल्क सुपर पावर है, किसकी सुपर पावर है? आप तूफान को क्यों नहीं रोकते? हरिकेन हर साल आके आपकी इतनी स्टेट्स को तबाह कर जाता है, आप क्यों नहीं रोक सकते? हम रात के मुकाबले में बहुत सारी रोशनियां तो जला लेते हैं, लेकिन हम रात को रोक सकते हैं? दिन आता है, हम नहीं सोना उठना चाहते, हम काले पर्दे डाल लेते हैं, लेकिन क्या हम दिन को पकड़ के अंधेरा कर सकते हैं? तो जब एक जात इतनी बड़ी है, उसके हाथ में सब कुछ है, तो बड़े क्यों बनते हो? जो बंदा कहता है मैं बड़ा हूं, मुझे पूजो, मुझे सजदा करो, मेरी बात मानो, मेरा हुक्म मानो, मैं जो कहता हूं करो, देखो तुमने करके क्या दिखाया है? चलो रात को जरा दिन में तो बदल के दिखा दो, दिन को रात में बदल के दिखा दो, कितनी बड़ी कुदरत है। लेकिन हम रोज चुके ये चीजें देखते हैं तो हम इस पर गौर ही नहीं करते। इंसान इतना ना शुक्र है कि जो काम पहली दफा होना कहता है वाह वाह हा हा, फिर दूसरी दफा देख के कहते हैं वो ठीक है, तीसरी चौथी कहते हैं ये तो होना ही है। देखिए रात और दिन बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे सिंबलाइज लग रहा है कि जैसे जिंदगी में कभी बिल्कुल अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है। हाँ? बच्चे का दुनिया में आना क्या है? सच बताइए, अगर इंसान ने अपनी आंखों से ना देखा हो ये मंजर, तो कोई मान सकता है कि बच्चा जिस तरीके से पैदा किया जाता है? अगर ये गैब का मामला होता और कहा जाता कि इस तरह बच्चा एक पानी की बूंद से शुरू होता है और फिर उसके बाद माँ के पेट में इतने साल रहकर बाहर आता है, कोई मानता? अब तो माने वगैरह गुजारा ही नहीं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम डॉक्टर हॉस्पिटल नर्सें औरतें सब देख रही हैं कि हो रहा है, क्योंकि हो रहा है तो हम सोचते ही नहीं। इतना सा छोटा सा बच्चा आता है हमारी गोद में, हम कहते हैं यही संभालना मुश्किल है, पता तब लगता है जब उसको टांगे लगती हैं। पहले कहते हैं कि माँ का पेट में बस बोझल है बोझल है, जरा बाहर आ जाए तो माँ सुखी है, वो पता चलता है जब बाहर आता है 40 दिन तक रोता ही रहता है। फिर माँ कहती है पेट में तो मैं सो तो जाती थी, अब तो इसको मुसीबत है कि ये सोता ही नहीं, मैं सोती हूँ तो ये उठ जाता है, ये उठता है तो मैं सोती हूँ, जब खाना खाने बैठो इसको मेरी जरूरत पड़ जाती है ना? फिर एक वो बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ जितना इंसान बच्चे के बड़े होने के ऊपर सोचे ना, अल्लाह को कोई दुनिया का पीर फकीर जिंदा मुर्दा कर सकता है? तो नहीं कर सकता, तो फिर तुम अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से कैसे कर सकते हो? फिर अल्लाह जितनी बात किसी की कैसी मान सकते हो, और अल्लाह जितना डर तुम किसी और का कैसे रख सकते हो? फिर आप देखिए कि अगली चीज हमने आयत में देखी, वल फुल किल्लती तजरी, और वो कश्ती जो के चलती है फिल बहरी, समंदरों में बीमा यनफाउन्नास, लोगों को नफा देती है। एक और अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहे हैं कुरान में कि देखो इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां, बहरी जहाज, वो टाइटैनिक हो, वो उसका आप कोई और नाम रख लें, वो फलां क्रूज हैं फलां है, तुम उसमें जो उछला कूदियां कर लो, गलत काम करो अच्छे करो जो भी करो, लेकिन बताओ कि इस कश्ती को कौन पानी में चलाता है? अब देखिए कि पानी की ताकत आदत क्या है कि आप एक पतली सी बारीक सी सुई लेंगे ना तो पानी के अंदर रखेंगे ना तो ये डूब जाएगी, लेकिन इतना मनो टनो वजन रखने वाला जहाज क्यों नहीं डूबता? अल्लाह ने हुक्म दे दिया तुमने नहीं डूबना। देखिए ये सब वो चीजें हैं जो इंसानों के बस में नहीं है। पानी पे आप कह दी ठीक है जी, वो जहाज चला रहा होता है आदमी और पानी जहाज बड़े महफूज है, लेकिन अगर अल्लाह पानी को हुक्म दे दे कि इसको ले लो तो पानी ले लेता है ना? किस तरह से आप देखिए कि अल्लाह की कुदरत है। और जितना बड़ा जहाज वो कहते हैं उतना सिक्योर होता है, उतना ज्यादा महफूज है, क्योंकि अल्लाह ने पानी को कह दिया कि बस तुमने इसको ऊपर ऊपर रखना है। बिजली देखिए, बिजली आप ये स्टील के अंदर से गुजर जाएगी, करंट पड़ेगा, पानी से गुजरेगी, ये प्लास्टिक में से नहीं गुजरती, अल्लाह का हुक्म है ना? तो जब एक बंदा अल्लाह के आगे इतना बेबस है तो फिर क्या वो उसकी बात नहीं मानेगा? हाँ? फिर इस तरह आप देखिए कि अगली नेमत जिसको हमने देखा था वो क्या था कि वमान जला मिनस समाई मिम्माई, बल्कि ये टाइटैनिक का मैंने लफ्ज बोला तो आपने नाम सुना होगा कि जब ये जहाज बना था, आज से 1 सदी 1.5 सदी पहले की बात है, ये तो अब डिस्कवर हुआ है, डूबा तो ये बहुत पहले था, और रैकेट पे कहते हैं वो अल्फाज मौजूद हैं कि उस कंपनी के बनाने वालों ने कहा था कि ये जहाज इतना सिक्योर है कि इसको तो गॉड भी नहीं डुबो सकता, गॉड ने डुबो के दिखा दिया। अभी उस दिन भी कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कि कैसे जमीन के अंदर पानी, जहाज जा रहा था तो अंदर चट्टान थी तो उसको टकराया और वो उलट गया और लोगों ने फिर अपनी जानें बचाई। तो कहाँ जाता है इंसान को उस वक्त बस? तो जब इतनी बड़ी जात है कि जो हमारे सारे काम चलाती है, तो क्या हमें फिर उसके मुकाबले में किसी दूसरे से डरना चाहिए? फिर अगली कुदरत देखी हमने, जो देखी वो कहती वमान जला मिनस समाई मिम माइन, थोड़ा सा गौर कर लीजिए, पानी बारिश, ये बारिश कहाँ से होती है? बचपन में हम क्या सोचते थे कि आसमान पे छलनी लगी हुई है वो छोटे छोटे सुराखों वाली, और ऊपर कोई पानी होता है तो उसमें से छन छन के पानी के कतरे गिरते हैं। आज देखे बारिश कहाँ से होती है? कोई साइंस पढ़ा हुआ तो फौरन बता देगा कि वो समुद्रों के ऊपर पानी जमा होता है, बहारात ऊपर जाते हैं, फिर वो गाढ़े होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर ठंडे होते हैं, फिर हवाएं उसको लाती हैं। ये करता कौन है, किसने किया? अल्लाह की जात। आप देखिए कि पाकिस्तान में मोटर चला के ना तो टैंकियों में पानी लोग भरते हैं, कितना मुश्किल, बिजली चली गई या पानी नहीं चढ़ रहा, फ्लो नहीं, हर वक्त मसले ही रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये इतने मनोटनों वजन को उठा के पानी फिरती है। आज भी अब हम आ रहे थे तो रास्ते में लॉस्ट ही थे, तो मैं ऊपर देख रही थी, जहर कल की जो हवाएं चली हुई हैं तो समंदरों से अभी भी आप देख रहे होंगे आसमान पे, यूं गहरे बादल जो है वो आ रहे हैं ना। तो मैं उनको देखते हुए ही सोच रही थी कि हमने यहाँ से थोड़ी सी चीज उधर मूव करानी हो, कितना किराया लग जाए, कितनी शिपिंग है। ये जितना पानी, बारिशें, हवाएं आसमानों से लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो उठाना पड़े तो हमारे तो हम कंगाल हो जाए। जिस तरह हमें दुनिया में बिल देने पड़ते हैं, अगर बारिश के पानी का भी बिल देना पड़े तो हम तो सारे लाश हो जाए। तो ये कुदरत की निशानी है, ये खुद नहीं हो सकता। ये जो लोगों ने बना ली ना एक मिथ, कहीं खुद ही हो रहा, ऑटोमाइजेशन है। किसने की? लोग कहते हैं अल्लाह ने बना दिया, अब उसका इख्तियार नहीं है। नहीं, इख्तियार ना हो तो फिर ये इस तरह से इंसान तूफानों का शिकार कैसे हो? फिर आप देखिए कि अगली चीज के फाहिया भी लर्द अबादा मौती है, उससे भी खूबसूरत बात। सादा पानी, वाइट कलर का पानी है ना बारिश का, अल्लाह ताला कहते हैं वो पानी मट्टी में जाता है, फीका बेरंग, और उसके अंदर से मीठे अनार और रेड कलर के, उसमें से ऑरेंज कलर के, वो ये मुर्दा जमीन में से जो फसलें उगती हैं ये पानी के साथ कैसे रंग बिरंगी उगती हैं। यानी थोड़ा सा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गौर करो तो ये कायनात में जो तुम खाते पीते हो वो क्या है। और अगर इस सिर्फ इसके ऊपर गौर करते हुए दो चीजों पे हम गौर कर लें, जो मेरा हाल है अक्सर लोगों के घरों में रोज बनता है, नंबर एक सैलड और दूसरा फ्रूट चाट। कभी फ्रूट चाट काटते वक्त मैंने और आपने सोचा, ये स्ट्रॉबेरी को सुर्ख रंग और ऊपर पीले छोटे छोटे जर्रे और वो काली आंखें किसने दी? इतनी डेलिकेट कि जरा छुरी सख्त लगे तो रोने लग जाती है। अंगूर जरा गुस्से से पकड़ेंगे ना तो रोने लग जाते हैं, पानी उसके आंसू निकल आते हैं। एक एक पंखड़ी आप देखिए, ऑरेंज खोले हाँ आप उसको, एक ऑरेंज में तकरीबन 12 फांगे, और हर फांग को खोल के देखे, हर एक के अंदर शायद कई 100 कतरे, सिंगल ड्रॉप पैक किया हुआ अल्लाह ने। आपकी पैकिंग कितनी होती है? कहते हैं जी 1 लीटर पैकिंग, हाफ लीटर पैकिंग, सबसे छोटी वो होती है जो जहाजों में सर्व करते हैं अमूमन, फ्यू मिलीलीटर, 2-3 घूंट होता है। मैं कहती हूँ पैक क्यों करना था, वो जो काली मर्चें देते हैं अल्लाह की बना, मैं कहती हूँ इस पे तो खर्चा इतना आ गया, गिन ले आप उसके दाने, इतनी छोटी पैकिंग होती है। अच्छा करते हैं क्योंकि जाया ना हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस पर यकीनन खर्चा पैकिंग का ज्यादा आया, अंदर है ही कुछ नहीं, कहा करो ज्यादा डाल दो थोड़ा साथ ले जाओ, लेकिन रिसोर्सेज तो जाया ना हो। तो आप देखिए कि अल्लाह ने सिंगल ड्रॉप को पैक किया हुआ है। आज आप फ्रूट चाट बनाएं और खोलें और उस पर बात करें अल्लाह से कि अल्लाह ये तूने कैसे बनाया, क्या किसान 7 ऑरेंज कलर डालता है, उधर सुर्ख रंग डालता है, सब्ज पत्ते निकल आते हैं, कहीं से आप देखिए कि सुर्ख गाजरें सफेद मुझे मट्टी के बाद चमकती हुई। अल्लाह कहते तुम नहीं सोचते कैसे, ये कौन कर रहा है, कौन है तुम्हारे ताकत की कोई करने वाला? आप जितनी मर्जी आर्टिफिशियल चीजें बना लें, पीछे नेचुरल चीजों से ही बनती हैं। अगर जमीन जो सब्जियां फल हमें देना छोड़ दे, हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, हमारा सारा किचन ही सूना हो जाए। फिर आप देखिए अगली चीज, वह बस सफी हमिन कुल्ली दाबतिन, हर तरह के चलने फिरने वाले उसमें चलाए। किस तरह चलते हैं हम इंसान, कैसे चलते हैं? पाँव पाँव, 2 कदम है। मुर्गी कैसे चलती है? उसके भी 2 पाँव हैं, बत्तख के भी 2 हैं, फर्क कैसे है? हम भी कुछ सीधे हैं, अब देखिए हमारे पाँव नीचे लगे हुए ना, आम जानवरों के पाँव यूं लगे होते हैं जिनके 2 होते हैं। 4 कैटल, जिसको आप मवेशी कह सकते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, अला नाम, सूरत अनाम पूरी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। हाँ, फिर आप देखिए कि रेप्टाइल्स पेट के बल चलते हैं, सांप, बिच्छू, सूरत नूर में आती आती है कि अल्लाह ताला कहता है कुछ तो ऐसे हैं जो पेट पे चलते हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 पे चलते हैं। और इंसान की जिंदगी में देखिए ये सारे मरहले आते हैं, सबसे पहले बच्चा पेट पे क्रॉल करता है, फिर वो 2 हाथ और 2 पांव दे रख के चल रहा होता है, फिर एकदम सीधा चलता है, फिर भागी जाता है। कौन करता है? कभी इंसान अल्लाह के बारे में गौर करे, कभी उसकी जिंदगी में कोई और गम ना रहे, किसी और से उसको कोई उम्मीद ना रहे, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको इतनी प्यारी जात ने पैदा किया। और साथ ही साथ कह दिया वह तशरीफ रियाह, हवाओं के चलने में। सोचिए जरा, कल की हवाएं याद है रात की, डर लग रहा होगा कुछ लोगों को, जब इतने बड़े बड़े दरख्त गिर गए तो घरों के भी तो छप्पर हिल ही रहे होंगे ना, कोई उन हवाओं को रोक सकता था? कभी खुशगवार हवाएं होती हैं तो मजा आता है, आप कहते हैं खिड़की खोल दो हवा अच्छी आ रही है, कभी आप इस खौफ से बंद कर देते हैं कि जी हवाएं बड़ी तेज है, बस सहाबिल मुसख्खरी बैन समा, और वो बादल वो क्लाउड जो आसमानों जमीन के बीच में तैरते रहते हैं, कैसे ना नीचे ऊपर ना ऊपर कुछ, कैसे बादल है देखिए आप, उनके ऊपर से भी कोई हैंगर्स नहीं है जिनमें लटक रहे हैं और नीचे भी नहीं, अल्लाह ने ऐसी ग्रेविटी रखी हुई है कि उसके साथ एक खास हद पे चीज आके रुक जाती है, ऊपर भी फोर्सेस हैं वो ऊपर खींचती हैं, जमीन नीचे से खींचती है, 9.8 के पॉइंट पे जमीन हर चीज को खींचती है, हमारा जो वजन होता है वेट ये जमीन की वजह से है, और ऊपर आसमान पे कुछ ऐसी ना नजर आने वाली चीजें हैं जो चीजों को ऊपर खींचती हैं, और एक जगह बैलेंस होता है जहां चीजें चलती रहती हैं। ला यातिल कौम याकिलून, अकल वाली कौम को निशानी है। इंसान का धोखा क्या है कि इन चीजों को देखता है, हर एक देखता है, लेकिन लोग खालिक तक पहुंचने की बजाय मखलूक में उलझ जाते हैं। इंसानों में कोई कुछ करेगा ना, मिसाल है कि अगर आप देखें किसी के घर जाएं और बड़ी खूबसूरत छत बनी हुई है और उस पर लंबे बड़े बड़े शेंगलर्स हैं और बहुत बड़े फानूस लटके हुए हैं, तो फिर लोग क्या पूछते हैं, अच्छा ये कहाँ से बनवाई है, ये किस कंपनी की है, कितनी प्यारी है, खूबसूरत चीजों में खो जाते हैं ना, मादा चीजों में। तो आप देखिए कि आसमान पे जो सितारे अल्लाह ने बनाए ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सब पे जब गौर व फिक्र करोगे ना तो तुम्हें सबसे पहला उस्ताद कायनात है। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो गौर व फिक्र करता है ना, उसको कोई उस्ताद ना भी मिले तो उसको कायनात से पता चल रहा है कि कोई है जो बना रहा है। यही मुशाहिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था सूरत अल-अनाम में आयत 74 और उसके अगला रुकू, जिसमें हमने वीकेंड पे दर्स में भी देखा था कि किस तरह उन्होंने सूरज चांद सितारों को देखकर अल्लाह को पहचाना। अब होना क्या चाहिए था कि सारी मोहब्बत फिर अल्लाह से हो, लेकिन लोगों का हाल क्या है, वमिनन्नासिमैयत्तखिज़ुमिन्दूनिल्लाहियंदादन, कुछ लोग इतने ना समझ हैं कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों से वो मोहब्बत करने लगते हैं, कहो बिल्ला जैसे कि मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, दूसरों के गुण गाएंगे, छोटी सी कोई काम करे, कोई थोड़ा सा पानी का ग्लास दे देना, 10 दफा उसको थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू, कोई आपको उठ जाते जाते टिश्यू पेपर पकड़ देना आपका जमीन से तो आप कहते हैं थैंक यू। तो जो अल्लाह दिन रात इतना कुछ देता है उसकी कितनी बात मानते हैं, यही जिक्र अगले सबक में आने वाला है। मोहब्बत किसी से नहीं की जा सकती, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये आपकी दिल की कहानी होनी चाहिए कि ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, इसको भी समझ लें। अल्लाह ताला हमें ये नहीं कहता कि किसी और से मोहब्बत ना करो, शोहर से मोहब्बत ना करो, बच्चों से नहीं करो, माँ बाप से नहीं करो, अल्लाह चाहते हैं हम सबसे मोहब्बत करें, उसी ने डाली है, लेकिन क्या नहीं चाहते कि सबसे शदीद मोहब्बत किसी और से हो। इसका पता कैसे चलता है, बात तो हम इस पे कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आपको एक छोटा सा क्राइटेरियन दे देती हूँ कि जैसे मुझे कैसे पता चले कि मुझे अल्लाह से ज्यादा प्यार है या अपने शौहर से, मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत शौहर की होती है, अनमेरिड है तो माँ बाप की साथ लगा ले, बच्चों की लगा ले, कैसे पता चले कि मुझे दूसरों से ज्यादा प्यार है या अल्लाह से? तो इसका सिंपल सा एक टेस्ट है, जैसे शुगर टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं तो फौरन पता चलता है, इसका सिंपल सा टेस्ट है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म है कि ये करो और शौहर कहते हैं कि ये ना करो, किसकी माननी है? अल्लाह की माननी है। अगर शौहर की मान ली, अल्लाह को नाराज किया, तो हमने क्या किया, शौहर की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ गई, बात समझ रहे? जिसकी बात मान के दूसरे को नाराज कर देते हैं उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। दुनिया में हम कई मिसालें इसकी लेते हैं, आप देखिए कि बच्चे अपने माँ बाप के आगे बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमें अपने दोस्तों के पास जाना है। अब जवान बच्ची है वो कहती है मुझे रात को जाना है दोस्तों को मिलने, माँ कहती है ना जाओ, वो कहती नहीं मैंने जाना है। अब अगर वो सरकश है बागी है तो चली जाती है, तो उसने किस बात का सबूत दिया कि उसको अपनी दोस्तों से अपने माँ बाप की नस्बत ज्यादा प्यार है, बस इसी को बड़ा कर लें। तो जब हम अल्लाह अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करते हैं, तो ये शिर्क फिल मोहब्बा है, मोहब्बत का शिर्क है। टू मेकिंग पार्टनर्स इन दी लव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जो हैं कल क्यामत के दिन बड़े दुखी होंगे। कैसे होंगे, उनका हाल क्या होगा, कि जिन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने अल्लाह ताला को नाराज किया था, उनका क्यामत के दिन हाल क्या होने वाला है, कि सबके बीच में आकर ये लोग इनकार कर देंगे कि कभी इन्होंने हमारी बात भी मानी थी। कैसे मानी थी, इस तबर्रज़ीन तुबी व तबाउ, ये पूरी बात समझ आ गई थी। कैसे वो लोग कयामत के दिन हमसे बेजार होंगे जिनको हमने खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज किया था। देखिए जिंदगी में ऐसे मामले आ जाते हैं। एक क्या होता है कि ना शौहर को अल्लाह से प्यार है ज्यादा, ना बीवी को, बात चलती जाती है। कोई बात नहीं, कभी उसने अल्लाह को खुश नाराज कर दिया उसके लिए, कभी शौहर ने। सबसे ज्यादा मसला कब आता है, जब दिल में ईमान आता है, इस्लाम आता है। एक अच्छा काम करता है तो दूसरा खराब करता है, फिर मसला है। उस वक्त अगर बंदा अल्लाह ताला को राजी कर ले और दूसरों की नाराजगी की परवाह ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दुआ करे कि तू मेरे दिल में इनकी मोहब्बत, इनके दिलों में मेरे लिए नरमी डाल दे, अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देता है। आपको पता है कि जब ये आयात नाजिल हो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो माहौल क्या था, हर घर में किसी को अल्लाह इस्लाम दे रहा था। मक्का में तो हालात क्या थे कि बच्चे पहले मुसलमान हो रहे थे, माँ बाप बाद में होते हैं, जद्दी पुश्ती उनके माँ बाप थे, अगली आयतों में जिक्र आने वाला है। तो होता क्या था कि ऐसे माँ बाप जो थे जो भी दीन पे नहीं थे, जब उनके बच्चे दीन पे आते तो माँ बाप उनको धमकियां देते। जैसे मुसअब बिन उमैर, बड़े अमीर शख्स थे, शहजादे कह ले, खूब खाते पीते उड़ते थे, माँ भी बड़ी अमीर थी। जब इनको अल्लाह के नबी सल्लम से मुलाकात का मौका मिला, उनकी जुबान से इस्लाम सीखा, दिल मान गया। जब दिल को जो पता चल गया है कि मेरा मालिक ये है, सच ये है, और मैंने खुद मरना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, तो मैं किसी की बात से क्यों डरूंगी, ये मुसलमान हो गए। मुसलमान हुए, जब माँ को खबर मिली इनके मुसलमान होने की, माँ ने इनसे बाइकआउट कर दिया, कहने लगी कि मैं तुमसे कलाम ही नहीं करूंगी, मैं तो तेरे से बात नहीं करूंगी। धमकियां दी, घर से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम को पढ़ लीजिए, उनके बाप आजर ने उनको धमकियां दी कि मैं तुझे रजम कर दूंगा। ये जो आग जलाई गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उसमें बाप भी ईंधन डालता था। तो ये तो होगा, ये तो होता। अबू हुरैरा जब मुसलमान हुए तो उनकी माँ इतनी नाराज हुई, कहने लगी तुमसे कलाम ही नहीं करूंगी। एक सहाबी मुसलमान हुए, माँ ने कहा मैं तो धूप में बैठ जाऊंगी, तुम्हारे सिरे मर चढ़ के मरूंगी। किसी ने कहा मैं कंघी नहीं करूंगी, किसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इसके अलावा जो चोटें पड़ी और जो बिलाल को पत्थरों पे लिटाया गया, वो सारा क्या था, आप सब तो सुनते ही रहते हैं ये कहानियां। तो जलती रेत पे हजरत बिलाल को पत्थरों पे लिटा देते थे, ऊपर भारी पत्थर डाल देते थे, कहते थे कहो कि अल्लाह एक नहीं और भी है साथ, तो कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी मार पड़ती थी उमैया उनको, इतना मारता था कि खुद थक जाता था। कहता था कि तुम इतनी मार खाते हो, तुम्हें कुछ नहीं दर्द होती, कहते थे मुझे पता है मैं किसके रास्ते में मार खा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन इनकी माँ के पास चला गया उमैया, कहने लगा अपने बेटे को समझाओ, इतनी मेरे से मार खाता है। तो माँ ने आके बेटे को कह दिया, माँ भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन छुपाया हुआ था हालात के मुताबिक कि फितना ना हो। तो माँ ने भी कहा बेटा जब अल्लाह को पता है तेरे दिल में कि तू मेरे पे ईमान लाता है, तुझे मेरे से प्यार है, मेरी बात मान है, तो फिर तो जुबान से। तो हजरत बिलाल हंसने लगे, कहने लगे आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया है और मैं जीत गया हूं। कहा वो कैसे, कहने लगे कि अगर ये मुझसे हारा ना होता ना, तो आज मेरी ही माँ को सिफारशी बना के मेरे सामने ना भेजता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई छोटी बात है, जब किसी से मोहब्बत होती है। आप देखिए लड़कियों को दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाती है, लड़की को लड़के से, ऐसे ही रात जाता लड़का चाहे उसको नाक भी ना साफ करना आता हो गई है जी, साथ पढ़ते थे हो गई है मोहब्बत, यही बहुत बड़ा उजर है कि जी साथ पढ़ते। अब क्या होता है, वो माँ बाप के आगे बोलती है, होश ही नहीं रहती कि ये कौन है जिससे शादी की मैं बात कर रही हूँ। बाज दफा मुसलमान भी नहीं होते लड़के, लड़कियां उनकी मोहब्बत में चूर होती है ना। तो एक लड़की लड़के की मोहब्बत में चूर है, तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी बताइए फिर उसका क्या हाल होगा। तो हमेशा अपनी जगह अल्लाह के ऊपर रखें, यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन जिन की भी बातें आपने मानी अल्लाह को नाराज करके, तो इस तबर तू भी मिनल, वो क्यामत के दिन वो लोग जिनकी बात मान के अल्लाह को नाराज कर दिया था वो सब बेजार हो जाएंगे आपसे। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आखिरी पारे तक जिंदगी रही तो आप सूरत अब्बस में पढ़ेंगे कि यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अभी, एक एक रिश्ते का नाम लेके अल्लाह ने बता दिया क्यामत के दिन आदमी अपने बाप से, भाई से, बेटे से, बीवी से सबसे भाग रहा होगा कि तुम मेरी जान छोड़ो। क्यों? कि लिमरी मिनहुम यौम इज़िन शानु युग्नी, उसे हर बंदे का हाल ऐसा होगा कि उसको दूसरों से बेजार कर देगा। मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि मैंने आग में से बचना है, मैं जन्नत में जाऊंगी नहीं तो मैं किसी की कैसे मदद करूंगी। इसीलिए अल्लाह ताला आप देख रहे कहते हैं कि वतकत्तत बिहिमल अस्वा, इसमें वो सब बुजुर्ग भी आते हैं जो शिर्क की हद तक लोगों को ये तसल्लियां दिला देते हैं कि देखो हम तुम्हारी क्यामत के दिन मदद करेंगे, तुम हमारे नाम पे नजरें दो, न्याजें दो, हमारी कब्रों पे आके दिए जलाओ, तुम आके हमारे काम करो करो, हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कोई उस दिन किसी के काम नहीं आएगा। आ सकता है जो खुद बीमार है वो किसी दूसरे बीमार की मदद कर सकता है? इसीलिए फिर इस आयत में कहा कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह उनके वो सारे अमल जो थे वो हसरतें बनाकर दिखाएगा। हसरत क्या होती है? लफ्ज़ हसरत सुन के दिल उदास हो जाता है। अरबी जुबान में कहते हैं किसी चीज को नंगा करना और उस पर से पर्दा उठाना। जो चीज हाथ से निकल जाए इस पर शर्मिंदा होना, इसको हसरत कहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब बंदे को गम होता है। तो गोया के हसरत क्या है? गम है। अल्लाह ताला कहते हैं क्यामत के दिन वो हसरतें बनेंगे उनके अमल जो इनके पीछे फिरते थे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। यहाँ तक देखिए कि हमने सबक किया था जिसमें से अभी तक जो बात समझ आई कि उम्मते मुस्लिमा उम्मते वसत कब बनेगी? जब तौहीद आएगी। पहला तकाजा एक मुसलमान से क्या है? लोग कहते हैं इस्लाम क्या है? कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई नहीं, और मोहम्मद उसके रसूल है। पूरी शरीयत इसमें आ जाती है। जब अल्लाह को मान लिया ना तो उसकी बात भी माननी है, और उसने कितनी छोटी बातें कही हैं। इतनी आसानी वाला दीन तो शायद कोई दुनिया में होगा नहीं। ये आज के सबक में आगे हम चलते हैं। अब आप लोग सब आयतों के साथ चलेंगे मेरे साथ ही, आयत नंबर 168 से इंशाल्लाह ताला। ये आयत दो दफा आनी है इसलिए इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमें लफ्जों को साथ लेके आपको गौर व फिक्र कराऊंगी। इस वक्त आप सबकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? पारे के ऊपर। किसके पारे पे? कि दूसरे के, अपने पारे पे होनी चाहिए। आइए देखते हैं अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 168, या यूहन्नास, ए लोगो, पहले तो इस पे गौर कर लीजिए, या यूहन्नास, ए लोगो, ओ मैनकाइंड। ये क्या पता चलता है? जब भी कुरान पाक की कोई आयत या यूहन्नास से शुरू हो तो ये हम मुसलमानों के ऊपर हुज्जत है। किस बात की? कि तुमने ये पैगाम बंदों तक पहुंचाना है। ये आयत बताती है कि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है। अच्छा, आपको थोड़ा सा याद आया कि नहीं, पहले पारे में चौथे ही रुकू में हमने क्या पढ़ा था? या यूहन्ना सोबुदु रब्बकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने रब की इबादत करो, आया था ना वहां आपको ये बात है। ये दूसरी दफा आ रहा है। पहली दफा जब या यूहन्नास आया, और ये वो आयत है जिसने कैट स्टीवन नाम सुना होगा आपने, यूसुफ इस्लाम के नाम पे जो आज है, उन्होंने इस किस्म की आयतों को सुन के सोचा था कि मैं तो इस किताब को मुसलमानों की किताब समझता था। आज भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि कुरान मुसलमानों की किताब है, तो फिर या यूहन्नास क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं? ये सब इंसानों की किताब है, ये आज हम मुसलमानों ने छुपाई हुई है क्योंकि हम खुद अमल नहीं करते और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं, हम अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हमने कई लोगों को इस किताब से दूर किया हुआ है। तो पहला या यूहन्नास क्या था जिसमें लोगों को अल्लाह की इबादत और बंदगी की दावत दी? अब दूसरा देखिए, या यूहन्नास उखुलू मिम्मा फिल अर्दी, ए लोगो खाओ उसमें से जो के जमीन से दिया। क्या पता चला? कि इबादत के बाद जो दूसरी अहम चीज जिसका तذکرہ इस आयत में है वो क्या है, खाओ। बहुत ही खूबसूरत बात है। आज आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये जो हम खाते हैं रिस्क, और ये ना खाओ वो ना खाओ, आखिर इसका हमारी इबादत से क्या ताल्लुक है। आयत का खुलासा करके आगे चलते हैं। खाओ मिम्मा फिल अर्दी, उसमें से जो जमीन से है। जमीन से ही आता है ना रिस्क। आम देखिए, सब्जियां भी जमीन से ही आती हैं, फल भी जमीन से आते हैं, लेकिन दूध जमीन से नहीं आता। लेकिन जिस भैंस से दूध मिलता है वो क्या खाती है? चारा। और चारा कहाँ से आता है? जमीन से आता है। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, आप लिख के देख लें, किसी ना किसी तरह से उसका ताल्लुक जमीन में से है। जमीन के अंदर से अल्लाह ताला कहते हैं जो निकलता है वो खाओ। यहां से आपको एक चीज सिंपल सी पहले तो पता चल गई कि हर चीज खाने की इजाजत है। समझ लीजिएगा, हलालन तय्यबन, दो लफ्ज याद कर लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। जो कुछ जमीन से निकलता है खाओ। वेजिटेरियन जिसको आप कहते हैं अपनी जुबान में, हर सब्जी हलाल है। इतनी बात लिख लें, फिर आगे चलें, क्योंकि ये पहली दफा मौजू आ रहा है तो मैं इसको जरा ऐसा ऐसा बोलना चाह रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। सब सब्जियां हलाल हैं, कोई ऐसी एक भी सब्जी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वो नहीं खा सकते। ठीक है, पहली बात है, जमीन तक ही रहते हैं अभी हम। दूसरी शर्त क्या है? तय्यबन, तय्यबो। हलाल क्या है और तय्यब क्या है, इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। हलाल दो किस्म का होता है। नंबर एक, कुछ चीजें अपनी जात से ही हलाल है, मसलन सब्जी, गाजर, मूली, आलू। ठीक है, ये हलाल है, अपनी नफ्स के साथ हलाल है। इसको खाने की शर्त क्या है? कि वो तय्यब भी हो। कैसे? साफ हो, बासी ना हो, गली सड़ी ना हो, कीड़ा ना लगी हो। कुछ चीजें सब्जियों की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में सब हलाल है, लेकिन अगर आप देखें कि आप देख रहे हैं कि एक सेब है तो उसके अंदर बिल्कुल काला रंग आ चुका है, खराब हो चुका है, तो वो क्या हुआ? हलाल तो है, तैयब नहीं रहा। और तैयब किसको कहते हैं? ताब यतीब व तैयब, तीब से है, खूबसूरत लगना, खुश। तैयब कौन सा होता है? जो पाक हो, क्योंकि आज साइंस की जबान में आप कहेंगे तो उसमें जरासीम आ गए ना। इस्लाम ये नहीं कहता कि सब कुछ खा लो, पहले ये देखो कि वो चीज हाइजीनिक भी है कि नहीं, सेहत के असूलों के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है हलाल का? मिसाल है, सेब की मिसाल आपको मैंने दी, सेब हलाल है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सेब जिन पैसों से खरीदा है वो पैसे सही नहीं है, शराब बेची आपने, जुए में खेले, किसी की चोरी करके खाए, हराम, सूद की कमाई, जो भी हराम की चीजें, वो आगे डिटेल्स आएंगी। तो सेब, जैसे ये खजूर हलाल है ना, बिल्कुल हलाल है, ये तैयब भी है, इसमें अंदर कीड़ा नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल फ्रेश डेट है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये खजूर हलाल भी है और तैयब भी है, और मुझे यकीन है कि जिन पैसों से ये खरीदी गई है वो भी कोई किसी की नाजायज कमाई नहीं है, किसी का हक नहीं मारा हुआ। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या किस्में होती हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मैं खजूर पकड़ूं, फिर मैं इसको तोड़ूं, तो इसमें कीड़ा लगा हो, पुरानी हो, सूंघूं तो इसमें स्मेल आ रही हो, तो मैं कह सकती हूँ कि ये खजूर भी हलाल थी, जिन पैसों से खरीदी वो भी जायज थे, लेकिन अब ये खराब हो गई है तो ये तैयब नहीं रही, तो मुझे नहीं खानी। ठीक, इतनी बात तो सबको क्लियर है ना। तो खजूर अपनी जगह हलाल है, खरीदने का सोर्स भी हलाल है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरे एंगल पे चलिए, मेहनत की कमाई है, पैसे बहुत मेहनत से कमाए, कोई उसमें नाजायज चीज नहीं। चीज है भी देखने में बड़ी खूबसूरत, खुशबूदार, लेकिन वो चीज क्या है? मसा खिंजीर का गोश्त, पिग, जिसको आप कहते हैं सुअर। अब वो या आगे जो चीजें आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज हलाल ही नहीं है। तो फिर दो बातें क्या हुई, सबका खुलासा बता दीजिए कि सफाई, हलाल क्या है? पाक, साफ। एक होती है बातनी सफाई, एक होती है जाहरी सफाई। चीज भी साफ हो, अच्छी भी हो, और उसको जिस चीज से लिया है वो भी जायज हो। अभी सिर्फ इतने बात पे रहे क्योंकि आगे आयत आएगी तो आप खुद देखते जाएंगे। अभी बस इतना क्या, सब कुछ खाओ, हलाल और तैयब खाओ, बासी खाने ना खाओ, मक्खियों पे मक्खियां बिन बनाती हैं वो दही बड़े ना खाओ, 4 दिन पुरानी फ्रूट चाट ना खाओ जिससे तुम बीमार हो जाओ, ये खा लो, हलाल तरीके से मिलती हैं, खाते जाओ ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा, वला तत्तबियो, और ना तुम पैरवी करो किसकी, खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या करता है वो, इन्नमा यामुरुकुम, बेशक वो तुमको हुक्म देता है किसका, बिसुई, बुराई का। नंबर एक, पहला स्टेप इस पे वन ए लिख ले, सबसे पहला शैतान का हुक्म होता है सू का, बुराई का। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके बीच में एक एरो डाल ले, वल फहशा, फिर फोहश पे ले जाता है, बेहयाई पे। ये इस स्टेज पे जब बंदा पहुंच जाए तो थर्ड स्टेज, वन तकुलू अलल्लाही मा ला तालमून, यहां तक के तुम्हें वो बातें कहने पे मजबूर करता है जिनको तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह के खिलाफ बातें करने वाला बना देता है बंदे को। पहले तो इस आयत को आप थोड़ा सा इस टेक्स्ट के साथ समझ लीजिए कि मक्का में कुछ लोग कुछ चीजों को अपने बुतों, जो उनके बुत थे या जो उनके बुजुर्ग थे पीर, जो उनकी खुशी के लिए नहीं खाते थे, हलाल चीज को हराम कर देते थे। हम इंशाल्लाह सूरत अल-अनाम में ये तफसील से पढ़ेंगे। पूरी सूरत का बुनियादी टॉपिक ये है कि कुछ जानवर थे पैदा होते ही उनका कान चीर देते थे। मिसाल देती हूँ कि जैसे कोई बकरी है पैदा होती थी ना, तो उसका कान चीर के एक किस्म की निशानी कर देते कि ये हमारे बुजुर्गों की न्याज है। फिर क्या करते कि उनको अपने बुजुर्गों की कब्रों पे छोड़ाते, बुत थे तो उसके स्थान पे छोड़ाते। अब वो गाय बकरी भैंस जिधर मर्जी चरे चुगे, किसी के खेत में से खा जाए, किसी का पानी पी जाए, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता था, बिल्कुल हलाल जानवर थे, लेकिन ये अपने बाप दादा के नाम पर उसको तरह बहीरा, साहिबा, हाम, हाम की मिसाल देती हूँ, ऊंट अरबों में बहुत आम है, ऊंट का गोश्त भी बहुत खाते थे, ऊंटनी का दूध भी पीते थे। जिस ऊंट से 10 बच्चे पैदा हो जाते थे, यानी जिस ऊंट की वजह से 10 बच्चे पैदा हो जाते ना, तो कहते थे ये ऊंट अब बहुत पहुंच गया, बहुत पहुंचा हुआ है, बुजुर्ग है कि इसके 10 बच्चे हो गए, उसको बुतों पे खुला छोड़ देते थे। आप इसको यूं समझें, अगर आपका कभी इत्तफाक हुआ हो कि कभी आप इंटीरियर सिंध गए या पंजाब के अंदरूनी गांव जहां बिल्कुल इल्म कम है, जहालत है, तो आप देखेंगे कि कुछ गायें, भैंसे, बकरियां लोगों ने कब्रों पे छोड़ी होती हैं, और लोग ना उनको खाते हैं ना उनका दूध पीते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये हमारे इन बुजुर्गों की खुशी के लिए हमने इधर छोड़ दी है। ऐसी बात सुनी, बिल्कुल उससे मिलती हुई मिसाल है कि जायज हलाल चीजें नहीं खाते थे। इसी तरह आप सूरत अल अनाम में ही पढ़ेंगे कि अगर एक बकरी है, उसके पेट में बच्चा है, प्रेग्नेंट है बकरी, अब जब बकरी को जिबा करते थे तो अगर पेट का बच्चा जिंदा निकल आए, तो कहते थे इसको सिर्फ हमारे मर्द खाएंगे, और अगर बच्चा मुर्दा निकल आए तो कहते थे औरतें खा लें। आपको बात नहीं समझ आ रही ना, तो मैं आपको थोड़ा समझती। कभी आपने कुछ अपने इंडिया पाकिस्तान की रस्मों के बारे में सुना? नाम सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ, कोई तासुब दिलाने नहीं। मतलब जैसे आपने कभी कुंडों के बारे में कुछ सुना, रजब के महीने में कुंडे भरते हैं, उसकी शरायत। ये तो भी चंद दिन पहले मुझे किसी सिस्टर ने सुनाया, कोई भी थी, मुझे याद भी नहीं रहती बात किसकी थी, लेकिन बिल्कुल रिसेंटली किसी ने मुझे सुनाया कि मैं एक महफिल में गई और उन्होंने वहां कहा कि हम 10 बीबियों की कहानी पढ़ेंगे। कहती मेरे पास एक बच्चा था छोटा, मैं उसको भी ले गई, तो पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर ये झगड़ा डाल दिया कि इस महफिल में एक मर्द नहीं आ सकता, इस बच्चे को क्या करना है। कहती मैंने उन्हें कहा कि मैं इस बच्चे को कहाँ छोड़ूं, कहती नहीं इस कमरे में नहीं रह सकता। खैर जो भी कहानी हुई होगी, कहती उस बच्चे को सुला दिया, जब वो सो गया तो कहा चलो जी मर्द नहीं रहा, औरतें रह गई हैं। फिर 10 बीबियां नहीं जमा हो रही, घरों से 10 औरतें बुलाई, फिर 10 सहाबिया या किन की कहानियां सुनाई, और कहती उसके बाद फिर लड्डू आ गए, और जब लड्डू आए तो वो खैर बीबी नहीं खाना है, उतने में बच्चा उठ गया, बच्चा लड्डू मांग रहा है, कह रहे नहीं ये लड्डू बच्चा नहीं खा सकता। ये किसने बताई बातें? आपने इस तरह की कहानियां बहुत सुनी होंगी, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये मेरी जुबान से आपको फायदा नहीं होना सुनने का, आप कहेंगे शायद मेरे ख्याल आता, आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे, उस मुआशरे के कुछ और ताल्लुक रस्म रिवाज थे, आज इंडिया पाकिस्तान के हमारे मुसलमानों और वहां रहने वाले लोगों के फर्क है, इस तरह की बातें करके, और सारा कुछ करते किस नाम पे थे, अन तकूलुल्लाहि मा ला तअलमून, कहते थे मैं अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। आज आप देखिए जो कुंडे भरते हैं, या जो 11वीं का आपने कभी 11वीं की न्याज का नाम सुना भाई, क्या होती है कि हर महीने की चांद की 11 तारीख को दूध की खीर पका के बांटो, ना बांटा तो तुम्हारी भैंसे मरेंगी, और वो एक खास बुजुर्ग होंगे कोई, उनके नाम पे बांटते हैं भाई, 11वीं की क्यों नहीं, या 12वीं की क्यों नहीं पकाते, 13वीं की पकाएं, 14वीं की खीर पकाएं, 15वीं की पकाएं। अल्लाह ने पैदा किया, गाय भी उसने दी, भैंस भी उसने दी, तो अभी सिर्फ ये आप सुन लें, कानों से टकराएं, अभी इसकी डिटेल में ना जाएं, सिर्फ इसमें अल्लाह ताला तनकीद करते हैं उस सोसाइटी पे जो बाप दादा के तौर तरीकों को अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बड़ा कर देते हैं। और यहाँ 3 स्टेप्स हैं, शैतान का ये असल में काम है कि बंदे को पहले जिस तरह देखिए हराम नहीं हम खा सकते ना, इस तरह हम हलाल छोड़ भी नहीं सकते। एक ये कि किसी को डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप रेड मीट ना खाएं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वेट लू बढ़ जाता है, इट्स फाइन नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद पे हराम कर लेना, कुछ यंग बच्चों की आदत होती है हम फिश नहीं खाते, कोई कहते हैं हम मीट नहीं खाते, कोई कहते हैं हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हराम नहीं कर सकते आप अपने ऊपर कुछ, पूरी सूरत है सूरत तहरीम के नाम पे, लिमा तो हर मा हल्लाक, ए नबी आप उस चीज को हराम कैसे करते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल किया। अब वहां वाक्य सुनेंगे कि अल्लाह के नबी ने एक दफा अपनी बीवियों की खुशी के लिए शहद को अपने ऊपर हराम कर दिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, इससे बू आती है मुंह में से, तो अल्लाह ताला ने आयत उतार दी। ये कैसे हो सकता है, नबी को भी नहीं इख्तियार दिया कि हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दे। तो यही बात यहाँ बता दी गई कि ऐसे लोग शैतान के नक्शे कदम पे चलते हैं, और जब उनको शैतान गलत चीजों पर डालता है, सबसे पहला शैतान का स्टेप क्या होता है, बिस्सू, ये समझ लीजिए, सबसे पहले शैतान इंसान, इसको आप किसी भी टेक्स्ट में समझ ले, जरूरी नहीं कि इस खाने पीने में समझिए, लेट्स सी मिसाल दे देती हूँ कि बिस्सुई क्या है, शैतान किसी के पास आके उसको कोई बुरा काम करवाते, कोई नहीं ना, अब देख लो मूवी, अब क्या हुआ भला, कुरान तो तुम अब पढ़ ही रही हो, तो भला मूवीज भी छोड़ दो, सारी छोड़ दो, अच्छा जी ठीक है, सबसे पहले वो उसको कोई भी फिक्शन के नाम पे गंदे नॉवल पढ़ना, रिसाले, डाइजेस्ट, कोई भी फिल्में दिखाने पे ले आता है, फिर कहते कोई बात नहीं ना, अब ये तो फन है, फिर वीकेंड इसीलिए तो होता है, इतना लंबा वीकेंड है अब हम क्या करें, मिसाल दे रही हूँ सिर्फ आपको, सबसे पहले सू, सू कहते छोटी बुराई को, सूसी या बुरी चीज, यानी छोटे छोटे गुनाहों पे लाता है, कोई बात नहीं ना, हम बुरे काम कर थोड़ी रहे हैं, हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं ना, पहला मरहला ये होता है, फर्स्ट स्टेप पे, मिसाल है किसी को कह देगा कि चलो ना कोई बात नहीं, वो देखो तो उधर नाइट क्लब है, तो लोग तो उधर जाके शराबे पीते हैं, बस वो तुम अंदर जो बारबेक्यू स्टोर है उसमें से बारबेक्यू खा लो, चलो बैठ जाओ, फन देख लो, फिल्म देख लो, सिनेमे में चले जाओ, मिसाल ले ले, चलो जाओ सिनेमे में फिल्म देखो, फिर क्या हर्ज है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, शुरू में इंसान को ये भी बहुत बड़ा लगता है क्योंकि उसने ये नहीं किया होता, पहली दफा उसको उसमें खौफ आता है, कुछ दिन तक अगर वो काम करता रहे बंदा और उसको कोई ना पकड़े, कोई बुराई ना हो, तो अगले दिनों में फिर शैतान क्या ले आता है, वल फख्शा, फुहश पे ले आता है, फुहश क्या है, जिसका ताल्लुक सेक्स के साथ है, शुरू में कहते हैं सिर्फ फिल्में देखो, कोई बात नहीं, तुम जी वो देखते हो ना सबक आमोज फिल्में देखते हो, अमूमन हमारे कल्चर में क्या कहते हैं, ये बड़ी घरेलू फिल्म है, तो भाई घरों में फैली हुई स्टोरियां थोड़ी है, लोग कहते हैं नहीं हम फिल्मों से सीखते हैं कि वो हीरोइन को ऐसा हुआ था तो वो फिर देखा ये हुआ तो ये हुआ था, तो भाई आपकी माँ नानी दादी कितनी कहानियां जिंदगी में वो नहीं सीखते, अमूमन यंगस्टर्स को शुरू में फिल्में या जो भी देखते होते वो इसी सोचते हैं, जब वो होता है ना तो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि फिर वो कहते हैं वो हम हीरो हीरोइन जैसे बनेंगे, वो जो पहनते हैं हम भी वही पहनेंगे, वो जो हरकतें करते हैं वो हम भी करेंगे, तो जिंदगी में ऐसे ऐसा फुहश आ जाता है, थोड़ी जरूरत बढ़ती है, वो कपड़े जो पहले कोई फिल्मों में पहनता हो तो लोग कहते थे बंद कर दो ये बड़ों के देखने वाली फिल्में हैं, आज वो बच्चा बच्चा देखता है, वो सीन जो आज से मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो सीन जो स्क्रीन पे आना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाप और भाई बैठे और बहनें देख लें, सच है कि झूठ, एक जुमला सुनते थे है तो बेवकूफी के, कहते थे नहीं ये बड़ों के देखने वाली फिल्म है, अडल्ट ओनली, हालांकि उनके लिए भी नहीं है वो। आज की फिल्में छोड़िए, आज के आप सिर्फ किसी के घर में आप किसी काम से गए हो ना, और पीछे ऐसी आवाज वो बंद करके स्क्रीन भी खोल देना, मैं कह सकती हूँ कि आज के दौर के जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं और जो शोज के एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ वो भी उन लच्चर फिल्मों से ज्यादा गंदी होती है। हया कैसे खत्म हुई, बाप भी बैठा है बेटी भी बैठी है, गंदे कपड़े देके कोई खाने की तरकीब सिखा रही है औरत आपको, आप कहते हैं हम खाने की तरकीब सुन रहे हैं, तो उसका हुलिया ऐसा है कि नजर आपकी उधर जाती। फुखश, हमेशा शैतान छोटी बुराई से बड़ी ले जाता है, फिर कहेगा क्या होता है सब करते हैं तुम भी करो फिर भी पहनो। अच्छा ये दूसरा स्टेप हो गया ना, जब बंदा फुखश में इंडल्ज हो जाता है, इंडल्ज समझते हैं, उसमें डूब जाता है, तो फिर अगली जरूरत आती है वान तकूल अल्लाह मा ला तालमुन, फिर जुबान खुलती है अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह इज नॉट सो मीन, इट्स ओके, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो दिखाएंगे हम, है देखने की चीज बार बार देखो। फिर औरतें अपने आप को एक्सपोज करती हैं, जिस्म उनका दिखता है फिर भी कहती हैं खैर है, ओ अल्लाह ऐसा ऐसा नहीं कि अल्लाह हमें पकड़ेगा, जब अल्लाह ने खूबसूरती बनाई है तो कहता है देखो, फिर बातें करते हैं लोग। शैतान के ये स्टेप्स हैं, छोटी बुराई बड़ी करवाता है, बड़ी बुराई को फिर और बड़ी कराता है, हद तक के बंदे को शिर्क तक पे अल्लाह ताला की जात के बारे में खिलाफ डालता है। और आप देखिए कि इन सारी चीजों का आगाज कहाँ से आया, यहाँ अब आप रब देखें, अभी आगे दोबारा आना है, इसलिए आप इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद भी गौर करेंगे। कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तैयबा, रिस्क हलाल और अच्छे कामों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगला सबक शुरू इस आयत से होगा, जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम में खराबी है ना, मतलब जो लोग शराब पियेंगे ना वो दूसरे गलत काम भी करेंगे, ये तो मानते हैं आप। अरबी में शराब को उम्मुल खबाइस कहते हैं, सारी गंदी चीजों की माँ, क्योंकि जहां शराब होगी वहां जुआ भी होगा, वहां जिना भी होगा, और वहां फुहाशी भी होगी, इज्जतें भी लुटेंगी, जोरी भी हो जाएगी, वहां कत्ल तक हो जाएगा। यही शायद का मतलब है। इस्लाम कहते हैं शुरू में ही रुक जाओ, इस्लाम को कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं किसी चीज से, लेकिन इस्लाम हमारी अक्लों का तहफुज करते हुए हमें ये बात कहता है कि तुम अपने जौक को अच्छा रखो, अपनी फितरत पे रहो, साफ चीजें खाओ, गलत चीजें ना खाओ, इखलाक को खराब करने वाली चीजें ना खाओ। आप बताइए सिगरेट क्या हलाल और तैयब है, शराब हलाल और तैयब है क्या, नहीं है ना। तो अगर इस्लाम इन चीजों से रोकता है तो इसमें हमारा फायदा है। आज वेस्ट में आप देखिए कितनी कोशिशें करते हैं लोग इन चीजों से लोगों को आजाद करें, लोग नहीं छुटते, और जब शराब हराम हुई थी, आगे आएंगे आए थे इंशाल्लाह थोड़ी दिन बाद, आप देखेंगे स्टेप्स में शराब हराम हुई, लोग पानी की तरह शराब पीते थे अरब में, इस्लाम ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको खत्म किया कि आपको कोई शराबी दिखेगा नहीं उनमें। ये तो अलग बात है कि आज हमने अपने दीन पे अमल छोड़ा तो हम भी सारी खराबियों में आ गए, तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, खुलासा के इतनी बात का ताकि आगे हम चले, कि हलाल खाना, अकले हलाल और सच्ची बात करना, सिदके मकाल कहते हैं इसको, सच्ची बात करना और हलाल खाना, ये जिंदगी में कामयाबी के दो गहरे असूल हैं। आपके पेट में जो अच्छा खाना जाएगा ना तो आप अच्छे काम करेंगे, बुरा खाना जाएगा तो बुरे काम करेंगे। और इस पे बहुत सारी हदीसें हैं जो इंशाल्लाह हम आगे जाके नोट करेंगे कि जब बंदे के पेट में हराम के लुक में होते हैं, गलत होते हैं, तो अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उसका हाजत, ना उसकी नमाज कबूल करता है। एक रिवायत नोट कर लें, सही मुस्लिम की है, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सफर करके बाल बिखरे हुए, मट्टी, सफर की यानी सारी तकलीफें उसके ऊपर है, फिर बैतुल्ला जाता है खाना काबा में, फिर वहां जाके अल्लाह से दुआएं करता है, या रब्बी हाय मेरे रब है मेरे रब, दुआएं मांगता है, आसमान से पुकार आती है कि कैसे इसकी दुआ कबूल हो, क्यों कि मत अमहू हराम, इसके पेट में जो खाना है वो हराम का है, वह मशरबहू हराम, और जो पानी इसके पेट में जो पिया उसने वो हराम है, मलबसहू हराम, इसके जिस्म पे लिबास जो वो हराम की कमाई का है, वगुदिया बिल हराम, और जो गजा इसके जिस्म से जिससे ये मोटा हुआ है ये सब हराम से है। अल्लाह अकबर, तो हलाल की आदत डालना अपने आप को बुराइयों से रोकना है। अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन वकास से फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें, कितने खुशकिस्मत है ना आपसे दुआ कराते थे। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की और कहा हलाल लुकमा खाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। तो गोया कि आपको पता चल रहा है कि अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उसकी वजह हमारे खाने पीने में खराबी है। एक हराम लुकमा पेट में जाता है ना, 40 दिन तक उसकी वजह से इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। और जो गोश्त पोश्त उससे खाया पिया वो जहन्नम के लायक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तआला हम सबको इससे बचा के रखे। अब ये बात करके 40 दिन तक उसकी कोई इबादत ही नहीं कबूल होती। अब ये बात समझ आ गई, वापस आ जाए टैक्स पे। हलाल चीजों को हराम करते थे बाप दादा का नाम लेकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 170 पे गौर कीजिएगा, वह इजा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है यानी जब वो ये गलत काम करते थे और कोई उनको जाके समझाता था, क्या कहा जाता था? आयत पे गौर करें प्लीज, छोड़ दें नोट्स को, दोबारा खोलें, सबके सामने पा रहे हो। वह इजा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता था इत्तबे उ, तुम पैरवी करो किसकी? मा अनजलल्लाह, उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया। वो क्या आप सब बताइएगा? कुरान और हदीस। इस कुरान में जो हुक्म है उसको मानो और जो हदीस में उसको मानो। इत्तबियू, पैरवी करो अल्लाह के नाजिल करदा की। जवाब सुनिएगा उनका, कालू, वो कहते हैं। कौन कहते हैं? वो जो बाप दादा के नाम पे थे। बल नत तबियू, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे किसकी? मा अल्फईन अलैहि आबाअना, उसी तरीके की जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। सुनिएगा भी, अल्लाह के किसी हुक्म को सुनकर ये कहने की बजाय कि कल तक नहीं पता था नहीं करते थे, आज पता चल रही है कोशिश कर लेंगे, खत्म हो गई बात। अल्लाह ये तो नहीं कहता कि बंदा एक ही दम दौड़ने लग जाता है, लेकिन मान तो लो मैं करूंगी, नहीं हो सकता फिर कोशिश करते हैं करते हैं, अल्लाह मदद करता है। लेकिन इनका जवाब क्या था? नहीं, हम अल्लाह को हुक्म सुन के नहीं मानते, बल्कि हम तो उसी तरीके पे चलेंगे जिस पे हमारे बाप दादा चलते थे, हम बाप दादा के तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। ये था असल में इसमें शिर्क, कि बास दफा बंदे को बाप दादा के नाम पर शैतान गलत से गलत काम करवाने पे माइल करता है और अल्लाह की बात भुला देता है। यहाँ जो लफ्ज है ना अल्फईना, अल्फा कहते हैं इत्तफाकन किसी चीज को पा लेना, सडनली कोई चीज आपको मिल जाए, किसी चीज को खुद ब खुद पा लेना, हिजाब दूर होने पर किसी चीज को मौजूद पाना। यानी इसके लिए इन्होंने कोशिश नहीं की, बस बाप दादा को करते देखा। खैर बात पूरी करते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अच्छा वाकई बाप दादा का नाम लेके गलत काम करते हो, तो फिर ये बताओ कि अवलो का ना आबाहुम ला याकिलून शैया, अगर जो उनके बाप दादा को समझ ना हो, वो तो बेचारे ना समझी में करते गए, उन तक तो कोई गलत सही बात बताने वाला पहुंचा ही नहीं, तुम्हें बात पता चल गई तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे? हैं वला यहतदून, और उनको सीधी राह नहीं मिली थी। क्या बताया गया इस आयत में? कि बाप दादा का नाम लेकर लोग अच्छे काम नहीं करते। यहां आप जरा थोड़ी सी हम बात करेंगे, इंसानों का एक आदत का एक स्टाइल रहा है कि गलत काम बाप दादा का नाम लेके करता है और अच्छे कामों में बाप दादा के तरीके छोड़ देता है। चलिए हम आपस में डिस्कशन करते हैं, हम सब अपने ऊपर लेते हैं माशाल्लाह। हम 2013 या 14 में, मैं तो पहले ही सोच लेती हूँ आगे थोड़ा सा, हाँ 13 पे है। हम सब पीछे अपने खानदान के बुजुर्गों को देखें, आज से कोई 25-30 साल पहले के बुजुर्ग, उससे भी पीछे हमारी नानियां दादियां फूफियां, हमारी माँ की नानियां। आप ये बताइए कि क्या आज हमारा लाइफस्टाइल और हमारी दादी परदादी के वक्त का लाइफस्टाइल एक ही है? क्या हम अपनी दादियों जैसे कपड़े पहनते हैं? कितनी बाहया थी वो, सर नहीं छुपा खोलती थी, कपड़े उनके ढीले ढाले होते थे। क्या आज हम औरतें बच्चियां यंग आज की जो है वो क्या वैसे ही बाहया कपड़े पहनती हैं? उनकी मेहमान नवाजी कितनी थी, वो कितना सब्र था उनमें, कनात कितनी थी। उस दौर की औरतें घरों में बैठ के सिर्फ बच्चे पालती थी, क्या आज की औरत यही करती है? उसको तो सारे शहर में फिरना है, कमाना है लाना है, फिर घर आके भी सफाइयां करनी, खाने पकाने, मियाँ को भी खुश करना। दुनियावी तौर तरीकों में कभी कोई बाप दादों को नहीं मानता। कभी आप में से मेरे में से किसी ने ये कहा कि भाई मुझे तो वही आज से 50 साल पुराना सोफा सेट लेना है अपने घर में जो मेरी दादी के वक्त में था, वो तो बूढ़े पहले दुनिया में बाद में जाते हैं, उनकी चीजें हम पहले उठा के फेंक देते हैं। कपड़े हम उन जैसे नहीं करारे पहनते आज, वो लंबी लंबी चुनरी और दुपट्टे और ढीली ढाली कमीजें पहनते, और आज जो हम पहनते हैं, कभी अपनी दादी को उस तस्वीर में सोची, हमारी दादी पर नानी इस तरह के वेस्टर्नाइज कपड़े पहन के फिरती होंगी, उस पे कुछ नहीं बोलते। और जहां दीन की बात, इबादत के तरीकों की बात है, कहते हम बाप दादा के तरीके की बात मानेंगे। आज जो साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी और फलां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बाप दादा ने तो कभी नाम भी नहीं सुने थे उन इल्मों के, तो फिर क्यों सीखते हैं आप इंग्लिश? आपकी दादी को इंग्लिश आती थी तो फिर आप क्यों बोल रही हैं? हाँ? आपकी नानी जो थी वो पैंट्स पहनती थी आप क्यों पहनती हैं? अच्छे कामों में कोई नहीं मानता। मैं मिसाल दे रही हूँ बेटा, आपको ये नहीं कह रही कि आप ऐसी हैं, मिसाल दे रही हूँ कि अच्छे काम बंदा अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है नफ्स की ख्वाहिश के लिए कर। जहां कोई रस्मों रिवाज इबादत के तरीके की बात है कि वो मेरी दादी तो ये पकाती थी, वो तो उस कब्र पे जाती थी, वो वहां न्याज देती थी, कहते हमने वही करनी है। हालांकि समझिए कि वो सीधे साधे लोग थे, उस दौर में भी इल्म इतना नहीं था, भोल बना था। हमारे अपने बड़ों में लोग क्या कुछ नहीं करते। और आपको ये पता है कि नहीं पता कि आज हम जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं, 2-3 पुश्त पीछे चले जाएं तो हमारे बड़ों में हिंदू सिख थे। ये आज अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो कैसे कहते हैं? हमारे बड़ों में कोई मुसलमान हुआ था तो आज हम उसकी नस्ल में मुसलमान हैं। और इस्लाम वो दीन है जो शुरू से शुरू हुआ था, ये कहानी आप सुन चुके हैं कि शुरू में सब मुसलमान थे, आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने बहकाया, कोई किधर पहुंच गया किसी बुत के पीछे, वो बर्त बिखर गए। अल्लाह ने हमारे बड़ों में किसी को समझ दे दी, आज हम मुसलमान हैं, राइट? तो अगर आप कहें कि नहीं जी मेरे माँ बाप को तो ये समझ नहीं आया था, तो फिर मुझे भी ना समझाओ। कोई करता है ऐसे? मेरी माँ को कंप्यूटर नहीं चलाना आता था, मैं भी नहीं चलाती। आप हैं ऐसे कोई करने वाले? भाई मैं नहीं कंप्यूटर चला सकती, मेरी अम्मी को कंप्यूटर नहीं आता, अकल ही नहीं बनती। तो जहां दीन की बात है, इसको आप कहते हैं अंधी तकलीद, लकीर का फकीर होना। तो खुलासा क्या है? इस्लाम अंधी तकलीद से बचाता है। अकल इस्तेमाल कर, यूज योर विजडम। अल्लाह ने अकल दी तो मैं सभी तुम्हारी आंखें दिखती, तुम कायन। मिसाल है कि अगर हमारे बाप दादा में को अल्लाह को नहीं मानता था, अब हमें समझ आ गई कि अल्लाह ने इतना कुछ बनाया, मैं तो उसको मानती हूँ, तो क्या गलत बात है? हमारे बाप दादा में हो सकते को किसी एक बुजुर्ग को बड़ा समझता हो। मिसाल देती हूँ मैं आपको कि जी ये बुजुर्ग हैं, बस सब इसके आगे झुके, इनके हाथ चूमे, इनकी बातें माने, वो बेचारे भोलपने में मान लेते थे। हमें आज समझ आ गई कि इस इंसान के तो अख्तियार में कुछ भी नहीं। हमारे सर में दर्द हो जाए ये ठीक नहीं कर सकता, बारिश हो ये धूप नहीं ला सकता, तो हम उसको क्यों माने? तो इस्लाम क्या चाहता है कि अपनी अकल से सोचो। और याद रखिए कि दीन और मजहब बंदे के अपने दिल के साथ होता है, खानदान से नहीं होता। अगर मेरा खानदान सारा जो है वो खाना काबा में जाके वहां की खिदमत भी करने लग जाए, लेकिन अगर मैं गलत काम करूंगी तो मुझे उनकी खिदमतें फायदा नहीं देंगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनकी बातों को छोड़ो, ये तो ऐसे हैं। अब आयत 171 जो आखिरी आयत है सबक की, इस पे गौर कीजिएगा। आयत कहाँ नजरें होंगी हमारी? पारे पे होंगी। शाबाश। वह मसलुल्लज़ीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, बड़े गौर से समझेंगे तो ये आयत समझ आएगी वरना नहीं। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके से पर चलने से इनकार कर दिया, कैसी है? कमसली, जैसी मिसाल, अल्लजी, उस शख्स की, कौन? यनएकू, जो चिल्लाता है, शाउट करने के मानों में, इंग्लिश में चिल्लाना, स्क्रीमिंग करता है। क्या है वो? बीमार, दुआ व निदान, मगर सुनना और पुकारना। सुम्मुम बुकमनुम युनफहुम ला याकिलून, वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, जो हक बात को नहीं समझते। मुश्किल आयत है, मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो अकल इस्तेमाल किए बगैर आंखें बंद किए अपने बड़ों के तौर तरीके पे चलते हैं और सच्ची बात समझ आ जाए फिर भी नहीं मानते, उनकी मिसाल दी है शेफर्ड की, चरवाहा। आपने कभी बकरियां चराते किसी को देखा हो, तो चरवाहे तो होते हैं ना, मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं, हू हा ही, तो वो बकरियां जमा हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो लोग अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते, ये असल में उस बकरियों के चरवाहे की तरह बकरियां पीछे उसके आ रही हैं कि जो सिर्फ आवाजें सुन के उसकी तरफ चल पड़े हैं। यहां दो लफ्ज हैं, उनको समझेंगे ना तो फर्क समझ आएगा, एक है दुआ और एक है निदा। दुआ क्या होती है? जिसके लिए सामने बंदा मौजूद हो। यानी दुआ क्या है? पुकारना, दावत, दुआ, बामानी लफ्ज होता है। जबकि जो निदा का लफ्ज है ना, ये कभी कभी बामानी भी होता है, बेमानी भी होता है, कोई मकसद नहीं होता। जैसे चू ची आवाजें निकलती है ना मुंह से, शोर, चिर चिर दरवाजा खोलते हैं, तो ये निदा हो सकती है। और दूसरी बात है कि जरूरी नहीं कि कोई पुकारने वाला आपके सामने हो। दुआ और निदा का फर्क क्या है कि जानवरों को चरवाहे की बात समझ आए कि ना आए। बस हम किसी बिल्ली को ये तो नहीं कहते, बिल्ली उठो कुर्सी पे बैठ जाओ, है? अब ये बिल्ली उठो कुर्सी पे बैठ जाओ, ये क्या है? दुआ, बामानी लफ्ज बोला है। हम बिल्ली को क्या कहते हैं? तो भाग जाती है। तो बिल्ली को नहीं पता कि जुमला क्या बोला है। इस तरह वो लोग जो अपनी अक्ल नहीं इस्तेमाल करते और अपने बाप दादा, रस्मों रिवाज, खानदानी तौर तरीकों पर ही चलते रहते हैं और उसी में मर जाएंगे, उनका हाल कयामत के दिन ये है कि वो हसरत करेंगे कि हम तो इंसान थे, अल्लाह ने हमें अक्ल दी थी, समझ दी थी, हम बात को सुने तो सही, और बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। खुलासा वही है बात का कि अक्ल को इस्तेमाल करो, दिल को इस्तेमाल करो। आप देखिए कि इस्लाम किसी को जबरदस्ती इस्लाम में नहीं लाता। आप पढ़ेंगे तीसरे पारे में, ला इकराह फिर दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि किसी को गन पॉइंट पे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, नेवर, यू कैन डू इट। क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे को अकल दी है। चार तरीके हैं अल्लाह को पाने के, अकल, विजडम जिसको आप कहते हैं, अकल बताती है ना इस कायनात को बनाने वाला एक है तो उसका हुक्म भी मानना है। दूसरी है फितरत, इंसान से उसकी रूह की हालत में अल्लाह ताला ने वादा लिया, सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे वादे अलस्त। तीसरी चीज है कायनात, सूरज चांद जिस पे जिक्र अभी हुआ, इन्ना फी खल्किस समावाती वल अर्ध में, ठीक है? कायनात बोल बोल के बता रही है कि इसको कोई पैदा कर रहा है। फिर दोहराती हूँ, इंसान की अकल बताती है कि अल्लाह एक है और उसने इस कायनात को बनाया है, ठीक है? सबको पता है ना, मुसलमान है या काफिर, सबको ये अकल में बात है। दूसरी चीज है फितरत, इंस्टिंक्ट इंग्लिश में लिखेंगे आप इसको, वही जो अल्लाह ने वादा किया, हमारी रूहों से लिया वादा। तीसरी चीज है कायनात पे गौर व फिक्र कर लें, आपको पता चलता है कोई कंट्रोलर गॉड है। और चौथी आखिरी चीज है वही रेवल्यूशन। आज अगर मैं और आप मुसलमान है ना, तो हमें ये चार रिसेप्टर मिल गए, समझ रहे? लेकिन अगर कोई काफिर है, एथियस्ट है, मुशरिक है, जो इस्लाम से दूर है, तो उसके पास क्या है? अकल उसके पास है, फितरत है, कायनात उसको भी ऐसे ही दिखती है। ये तो नहीं कि मोमिन को घास जो है वो सब्ज दिखता है और काफिर को काला दिखता है। तो तीन चीजें तो हर एक के पास है, सिर्फ इस्लाम की सूरत में इस वक्त जो हमारे पास है वो रेवोल्यूशन है। इसी के लिए अल्लाह ने हमें कहा कि वजालनाकुम उम्मतम वसता, तुम इस इल्म को, दीन के पैगाम को लोगों तक आम कर दो। ये किताब, ये कुरान फितरत की किताब है। आपको पढ़ते हुए लग रहा है कि ये बातें को मेरे और आपसे को बड़ी हैं? अपनी बातें लग रही हैं, हालांकि ये अल्लाह का कलाम है। तो गोया कि जब हम इस कुरान को आम करते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिल खोल देता है। और रह गई बात, वो लोग जो अकल और दिल दिमाग से काम नहीं लेते, तो सूरत अल अराफ आयत 179 का तर्जमा जाके लिखिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं, लहुम कुलूबुल ला यफकहून बिहा, उनके दिल तो हैं लेकिन वो उससे सोचते नहीं है। वलहुम आयुनु ला युबसिरून बिहा, और उनकी आंखें भी हैं लेकिन उससे देखते नहीं है। वलहुम आज़ानु ला यस्माउन बिहा, कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। हाल क्या इनका? उलाइका कल अनाम, ये चौपाए हैं, कैटल्स हैं। बलहुम अदल, ये तो उससे भी भटके हुए हैं। कैसे? कि जानवरों को भी पता है कि जिस मालिक का रिस्क खाते हैं उसके आगे झुकना है, लेकिन ये इंसान अल्लाह के आगे नहीं झुकते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस इल्म को हमारे खिलाफ बोझ ना बनाए। जैसे सूरत जुमा आयत 5 में अल्लाह ताला यहूद के उलमा की मिसाल दे के कहते हैं कि मसलुल लजीना हुम्मिलुत तौरात, वो लोग जिनको तौरात दी गई थी, उठवाई गई थी, फिर उन्होंने उसको ना उठा, तो ये इल्म गधे का बोझ बन जाएगा अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको तासुबात से ऊपर करके, खुले दिल से अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके, शऊर को इस्तेमाल करके अल्लाह तक पहुंचने वाला बना दे। सूरह हज की आयत नंबर 46 में आता है कि फइन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर, के आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। जो सीनों में है। तो कुछ लोगों की आंखें अंधी होती हैं, कुछ के दिल अंधे होते हैं। इसमें जो मौजू शुरू हुआ है, इसका इंशाल्लाह हम तफसीर अगले सबक में, हमें रिस्क के बारे में, और कल का सबक बहुत अहम है। अगर आपने वो सबक सुन लिया ना, तो आपको एक स्ट्रेच में पता चल जाएगा कि इस्लाम में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। और आपको हैरत होगी, इतनी बड़ी कायनात, कितना कुछ है इस दुनिया में। किसी ग्रोसरी स्टोर का सोचे, सिर्फ चार चीजें हराम है। वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में कल देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल वाला बना दे। कोई सवाल जो आज के सबक को सुनते वक्त आपके जहनों में आया हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी जी आप पीछे से बेटा। कितना प्यारा सवाल है। अच्छा, मुझे इस उम्र की बच्चियां इतनी प्यारी लगती हैं, मैं क्या बताऊं। आज मैं नीचे से ऊपर आई हूँ ना सीढ़ियों से, तो मुझे लग गया पता कि यहाँ हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियां आई हुई हैं। आज आप अभी जाएंगे ना ब्रेक में, तो जूते देखिएगा, यकीन करें ऐसे चुने। मैंने खुद ना चाहते हुए भी पूछा, बच्चियों से स्टॉल पे थी, मैंने कहा बेटा ये जूते आपने ऐसे किए हैं? तो पहले तो वो डर गई, तो मैंने कहा शाबाश, इतने प्यार से उन्होंने जूते रखे हैं ना। तो ये उम्र बड़ी प्यारी है। इनका सवाल आपके जिन में क्यों नहीं आया पहले मुझे आप बताएं, कि अगर कोई एक्सीडेंटली खा ले, कोई उसको खिला दे, तो क्या फिर भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी? माशाल्लाह, वेरी गुड। आपसे सबसे ये बच्ची अच्छी है इस वक्त, किसने ये सवाल सोचा। आप भी लकीर के फकीर हैं, जो मैं बोलती हूँ सिर्फ वो सुनते हैं, सोचते नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला बंदे को सिर्फ उस चीज पे पकड़ता है जो वो जान के करे। गलती से होगी तो अल्लाह ताला उसको माफ करते हैं। बस करना ये चाहिए कि जब पता चल जाए तो फौरन उस चीज को छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। और जी आप इधर इशरत। देखिए कि इसमें लफ्ज है ना कि बगैर सोचे समझे बोलना। ये कह रही है कि तकलीद के लफ्ज की वजाहत कर दें। दो बातें समझ लें, बस सिंपल लफ्ज लिख लें। एक लफ्ज लिखें तकलीद, तकलीद, और वर्सेस यानी ऑपोजिट लिख लें तहकीक। तहकीक करना, रिसर्च करना। रिसर्च करके आप कोई काम करते हैं ना, मिसाल देती हूँ कि आप आज तक कोई एक खास तरीका करते थे काम, कोई भी मिसाल ले लें, आज के सबक में ही ले लें, शायद आपको कोई भी याद आ जाए। कि मिसाल है कि जैसे मैंने खुद कभी किया नहीं, ना मुझे इसकी डिटेल्स पता है, लेकिन चलें ये हमने गुंडों की बात की। हो सकता है कि आप में से बचपन से ही, 11वीं की बात कर लेते हैं, 11वीं के दूध की, कुछ भी ले लें, आई डोंट माइंड, सिर्फ आपको बात समझ आ जाए, जिससे शुरू से आप करती आई। पहले आपने अपने घर में दादी को वही काम करते देखा कि वो दूध पका के फिर जाके कब्रों पे देती हैं, मिसाल है, कोई भी बात है। बाद में आपने अपनी अम्मी को देखा, शादी हुई तो आई तो सास को देखा, आज तक आप यही देखती रहें कि ये काम होता है। अब आज आप कुरान पढ़ रही हैं, अब आपका शौर उभर रहा है कि मुझे तो अल्लाह की मर्जी दिख रही है, तो आप तहकीक कर लें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था, सहाबा ने ये किया था। किया था 100 दफा करें। याद रखिए बड़ों की हर बात गलत नहीं होती, उनकी अच्छी बातें हमने छोड़ी भी, हालांकि उनमें बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन उनकी वो बातें जो वो ना समझी में करते थे, हम उनको सिर्फ उजर बना के शैतान के कहने पे करते हैं। ठीक है, तो तकलीद क्या है कि बंदा बगैर तहकीक किए किसी की बात मान ले। मैं अपने ऊपर लेके बात समझाती हूँ आपको। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए बैठी हूँ, अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं आपकी खिदमत करूं। मैं आपको जो भी बात इल्म की बुनियाद देती हूँ, किस बुनियाद पे देती हूँ? दलील की बुनियाद पे देती है ना। आप मेरे मुंह से सुनो, वो दलील पे मानिएगा। और आप सिर्फ ये कि हमारी उस्ताद ने कह दिया है, चुप चुप चुप, कोई कह अच्छा भी दिखाओ इसकी क्या दलील, आपके चुप, हमारी उस्ताद ने कह दिया, हम इनको बड़ा समझते हैं, हम इनकी मत इनको बहुत करते हैं, और नौज बिल्ला आप मुझे पूजने ही लग जाए तो आप समझे कि सीधे जहन्नुम में जाने वाला रास्ता है। मेरी भी आप वो बात समझें जिसकी आपको दलील मिलती है, और ट्रस्ट पे हम बैठते हैं ना। अगर यहाँ हर बात के आप दलाइल मांगे, हदीसें मांगे, मैं आपको दूं, तो बात कितनी बोझिल हो जाएगी। तो हम एक ट्रस्ट रखते हैं अपने उस्तादों पे कि ये हमें हक बात देंगे। और आपको, आप देखिए कुरान तो खुलवा खुलवा के पढ़ा रहे हैं, हदीसें साथ, जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ इस साल के डायल्यूट करके आपके सामने रखूँ, क्योंकि ये हदीसों का मजमुआ है और भी बहुत सारी हैं। आप जो ही बड़े होते जाएंगे, आपको ऐसी तफसीरों के नाम बताते जाएंगे जिसमें आपको सारी हदीसें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो बस ये है, ठीक है। तो ब्लाइंड फेथ नहीं रखना, सोच समझ के बात करनी है। तो जजाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला ने ये सबक पूरा करवाया। अब मैं चाहूंगी कि अपनी बहन को बुलाऊं, सिस्टर आमना आप आएंगी? आज हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं इस नाते से कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी बहन है। मैं कह सकती हूँ कि जी आप आइए, आइए आना चाहे आप आइए, आपसे थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं आपका। हम